Today we are reading from 3rd canto, 30th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Hindi mein kahenge. Aaj hum Srimad Bhagavat ke 30th skand ke 30th adhyay ke 20th shlok se padhne ja rahe hain. Adhyay ka shirshak hai Bhagavan Kapil dwara vipreet karmon ka varnan. Yatana deh avrutya पाशैर्बध्वा कलेबलात् नयतो दीर्घमद्वानम् दण्डयम् राजभटा यथा. जिस प्रकार राज्य के सिपाही अपराधी को दंडित करने के लिए उसे गिरफ्तार करते हैं, और उसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष को यमदूतों द्वारा बंदी बनाया जाता है. वे उसे मजबूत रस्सी से गले से बांध लेते हैं और उसका सूक्ष्म शरीर को ढक देते हैं, जिससे उसे कठोर दंड मिल सके और दिया जा सके. श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में काफ़ी दिनों से जो पापी जीवों को दंड मिलता है उसका वर्णन हो रहा है. कभी कभी बहुत दुख होता है सुनकर, क्या क्या कष्ट प्राप्त होता है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत जो है वो हमारे कल्याण के लिए लिखा गया है. अगर मनुष्य जीव को पता नहीं है कि क्या कर्म करने से क्या फल मिलते हैं, कौन से कर्म बुरे कर्मों में गिने जाते हैं, कौन से कर्मों को अच्छे में गिना जाता है, मुझे जो करने में अच्छा लगता है वो भगवान की दृष्टि से बुरा कर्म है, अगर ये पता नहीं होगा तो फिर मनुष्य जाति का उद्धार कैसे होगा. अनेक लोगों को लगता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं. कोई चोरी कर रहा है, कोई बलात्कार कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई बड़ी संख्या में रुपयों को लोगों से लूट रहा है, गवर्नमेंट को लूट रहा है. तो जब वो करते हैं तो उनको वो अच्छा लगता है, कि वो सोचते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं. लेकिन उनको पता होना चाहिए कि अच्छा नहीं है, और ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा करने से क्या दंड मिलता है. और भगवान की असीम कृपा से यहाँ पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ में कपिल देव भगवान, जो कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, वो हमें विस्तार में बता रहे हैं कि क्या क्या होता है. और ये हर प्रकार के व्यक्ति के लिए, हर भाषा के, हर धर्म के, हर जाति के, हर भाषा बोलने वाले, हर देश के सभी व्यक्तियों को जो मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं, ये सबके लिए लागू है. तो यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में संलग्न होते हैं और इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नानाविध प्रकार के गलत कार्य करते हैं, उनको यमदूत गले में रस्सी बांधकर खींच के लेके जाते हैं. और एक प्रकार का शरीर होता है जिसका नाम है यातना देह. यातना देह का मतलब होता है कि वो केवल दर्द को ही अनुभव कर सकता है, खुशियों का वातावरण होने पर भी वो खुशियों को संवेदना नहीं कर सकता है, उसका अनुभव ही नहीं कर सकता है. उसके अंदर केवल दर्द का ही नर्व टर्मिनल्स बने हुए हैं. उस शरीर में इतना दर्द देते हैं, इतना कष्ट देते हैं, इतनी पीड़ा देते हैं कि जीव केवल तड़पता रहता है लेकिन मरता नहीं है, उसका शरीर समाप्त नहीं होता है. और जब तक उसके कर्मों का हिसाब किताब है तब तक उसको वहाँ दंड मिलता है, और कोई दया माया नहीं होती है. यमदूत को जीव को नष्ट करने का अधिकार नहीं, लेकिन दंड जरूर देते हैं, बहुत भयंकर, जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में और जेल में भी नहीं होता है. उतना भयंकर दंड जो है यमदूतों के देश में जीव को प्राप्त होता है जब वो पाप करते हैं. तो ये सब क्यों बताया जा रहा है? कम से कम मनुष्य को बुद्धि दी गई है, अगर उसको बताया जाए कि ये गलत है, उसका परिणाम ये है, तो बुद्धि के आधार पर वो ये तय करेगा कि आगे मैं ये नहीं करूँगा. जैसे जब तक आदमी मांस खाता है तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन जब वो कसाई खाने में, कत्तल खाने में जाता है और वहाँ देखता है किस प्रकार से जानवरों को क्रूरता से मारा जाता है, तो वो सोचता है कि मैं अभी मांस नहीं खाऊंगा, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं कि इतने जीवों को इतना भयंकर कष्ट देकर मैं अपनी जिह्वा को संतुष्ट करूँ, तो मांस खाना छोड़ देता है. तो इस प्रकार का ज्ञान जो है वो आवश्यक है, वो भगवान यहाँ पर दे रहे हैं. तो सभी लोगों को विनती है कि श्रीमद् भागवत के इस ज्ञान को गंभीरता से लें और अपने जीवन को सूक्ष्म और स्थूल पापों से बचाने का प्रयास करें, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो शुद्धिकरण के लिए है, पवित्रता को निर्माण करने के लिए है, भगवान की प्राप्ति करने के लिए है। एक शुद्ध और आदर्श जीवन जीने के लिए मनुष्य का जीव शरीर भगवान ने हमको दिया है, और इसीलिए ये सब ज्ञान प्राप्त होना समझना बहुत ज़रूरी है और जीवन में उतारना भी ज़रूरी है। अगर हम इसमें से ज्ञान जीवन को जीवन में उतार सके तो हमारा मनुष्य जीवन धन्य है, और इसी जीवन के अंत में हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हरे कृष्णा। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि आज डॉक्टर धवल दलाल का 50वां जन्मदिन है। आज उन्होंने अपने जीवन के 50 साल पूरे किए हैं, और डॉक्टर धवल दलाल, जिनको हम हिज ग्रेस द्वारकाधीश प्रभु के नाम से भी जानते हैं, वो हमारे अस्पताल के इतिहास से लेकर 1986 से 1984 से लेकर जो हमारा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल का गौरवशाली इतिहास है उसके एक प्रमुख आधार स्तंभ है, और हमारे जो संग्रह लोगों का यहाँ पर जिन्होंने इस अस्पताल को बनाया उसमें से एक प्रमुख व्यक्ति हैं, जिन्होंने विद्यार्थी काल से ही भगवान की भक्ति के मार्ग को अपनाया और अपना जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। वो हमारे हॉस्पिटल के एक आदर्श डॉक्टर हैं, सब लोग जिनको फिजिशियन के रूप में जानते हैं वो सबको पता है कि डॉक्टर दलाल कितने लोकप्रिय डॉक्टर हैं। अगर हमारे हॉस्पिटल में उनका विजिटिंग आवर्स सुबह 1 से लेकर सुबह 4 तक रखा जाए तो भी वो फुल रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, 12 साल के ऊपर से बच्चों से लेकर 80 साल के उम्र से बूढ़े लोगों तक सब लोगों में वो प्रिय है, और उनकी ये विशेषता है कि उनका जो वैद्यकीय व्यवसाय है वो बहुत प्रामाणिक है, बहुत सिंसियर है और भगवान की भावना से प्रेरित है, इसलिए उनका प्रैक्टिस बहुत क्लीन है, उसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जो ट्रीटमेंट ज़रूरी है वो लोगों को देते हैं और बहुत प्रामाणिकता से और प्रेम से उनको ट्रीटमेंट देते हैं, इसलिए बहुत सारी पेशेंट्स उनको अपने पुत्र की तरह मानते हैं। साथ साथ में डॉक्टर दलाल एक भगवान के समर्पित भक्त हैं और धन की लालसा से मुक्त हैं। आज तक का इतिहास है अस्पताल का, वो कभी भी अकाउंट डिपार्टमेंट में जाकर उन्होंने अपने सैलरी अपने पेमेंट चेक का कभी छानबीन नहीं किया, और उनका व्यवसाय एक डॉक्टर के लिए आदर्श है, क्योंकि एक डॉक्टर हमेशा जब भी प्रैक्टिस करता है तो उसकी प्रैक्टिस उसको बहुत मोहित करती है, उसको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करती है और दिन रात वो प्रैक्टिस में फंसा रहता है। लेकिन डॉक्टर दलाल का तो जीवन है, क्योंकि भगवान उनके केंद्र स्थान में है जीवन के, इसलिए हर गुरुवार को मंदिर जाते हैं और भगवान की विग्रहों की सेवा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनकी आरती करते हैं, हर रविवार को मंदिर जाते हैं विदाउट फेल। आम कोई प्रैक्टिशनर होता तो उनको अगर इतना डिमांड होता तो वो हर इमरजेंसी खुद करता, हर कॉल खुद लेता और करोड़ों रुपए की धन संपत्ति इकट्ठा करता, लेकिन डॉक्टर दलाल का जो जीवन का ध्येय है वो बहुत क्लियर है, इसलिए वो अपने व्यवसाय के बीच में भगवान की भावनाओं को कैसे कल्टिवेट करना है, कैसे परवरिश करनी है, इसका एक आदर्श उदाहरण उन्होंने सभी डॉक्टरों के सामने यहाँ प्रस्तुत किया है। वो एक अद्भुत ड्रामा एक्टर हैं, अभिनेता हैं, उन्होंने राधा गोपीनाथ भक्त समाज के लिए अपने पत्नी के साथ में एक अनेक अविस्मरणीय नाटिकाओं को प्रस्तुत किया है और अनेक अद्भुत किरदारों को अपने रूप में प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है, और उनमें ऐसे अनेक गुण हैं जो, बट इन समरी वी कैन से दैट इज़ अ थरो जेंटलमैन। उनके कंपनी में जो भी आता है उनको आनंद का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, पवित्रता का अनुभव होता है, जो भी उनको मिलता है मरीज के रूप में, मित्र के रूप में। और आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, अपने इतने बिजी व्यवसाय को संभालते हुए उन्होंने कई संतों का ट्रीटमेंट किया है। कई संत यहाँ पर आते हैं, केवल उनके नाम से आते हैं, उनके ट्रीटमेंट लेते हैं, उनसे ईमेल पे फ़ोन पे ट्रीटमेंट विदेशों में भी लेते रहते हैं। इतना सारा सुंदर वैद्यकीय कार्य करते हुए भी उनका एक विशेषता है, वो विवाह होने वाले लोगों होने के पूर्व जो कन्याएं हैं और जो लड़के होते हैं उनको गृहस्थ आश्रम के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए भारत भर घूमते हैं। महाराष्ट्र में अधिक घूमते हैं और भारत भर कम घूमते हैं, लेकिन पूरे भारत भर उनको बुलाते हैं कि वो विवाह पूर्व कन्याओं और लड़कों को कैसे आदर्श विवाह जीवन जीना चाहिए उसके बारे में गाइडेंस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। आप जानते हैं आज के ज़माने में विवाह कैसे असफल होते हैं और लोग डिवोर्स की ओर जाते हैं, तो एक सुखी और आदर्श विवाह जीवन वैवाहिक जीवन कैसे जीना चाहिए उसके लिए वो सेमिनार्स करते रहते हैं, उनके लिए बहुत डिमांड है। अभी अभी उनको विदेशों में भी इसके लिए बुलाया जा रहा है और अभी अभी लास्ट ईयर वो मॉरिशस में भी जाकर आए और वहाँ पर गृहस्थ आश्रम में ट्रेनिंग करके आए। तो मैं तो बहुत समय तक उनके बारे में बोल सकता हूँ और मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं उनका बहुत ही निजी दोस्त हूँ। बहुत ही 20 अभी 30 साल पूरे हो गए हम लोग कॉलेज में और हरे कृष्णा मंदिर जुहू में 1986 से एकत्र हैं और वो हमारी बिल्डिंग में रहते हैं, इसलिए हमारा बहुत निकट का संबंध है। तो आज उनका इस 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आप सबकी ओर से, हमारे मैनेजमेंट की ओर से, इसलिए प्रभुपाद जी की ओर से, गुरुदेव की ओर से हम उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं और ये शुभकामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए वो ऐसे ही श्रेष्ठ आदर्श के रूप में हमारे बीच में रहे और लोगों को प्रेरणा देते रहे। और ख़ास करके जो डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनके लिए एक भक्तिमय कंसल्टेंट के रूप में कैसे जीवन जीना है उसका आदर्श सबके लिए बना रहे, ये मैं उनके लिए शुभकामना करता हूँ। साथ साथ में आज हमारे बहुत ही सीनियर एम्प्लॉई मिसेस संगीता कोलते, जो हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में NABS प्रोजेक्ट में असिस्टेंट मैनेजर हैं, उनका भी जन्मदिन है। उन्होंने भी हमारे हॉस्पिटल का जो प्रोजेक्ट है, जो भक्ति वेदांत क्लिनिक आज जिसको हम जानते हैं, उसको चैतन्य पॉलीक्लिनिक के नाम पे जानते थे, 1993 से वो हमारे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के सेवा में हैं। एक सिंपल क्लर्क के रूप में सेवा आरंभ किया था, आज वहाँ पर उन्होंने अपने डेडिकेशन समर्पण के कारण यहाँ पर उन्होंने कम से कम 21 साल की सेवा दी है हमारे प्रोजेक्ट में और आज हमारे NABH के प्रोजेक्ट में उनका प्रमुख सहयोग है। साथ साथ में हॉस्पिटल के अनेक जो उतार चढ़ाव हॉस्पिटल में हुए हैं उन सभी में वो हमारे साथ में रहे हैं और उनका बहुत हमारे कर्मचारियों पर उनका प्रभाव है, वो उन पर प्रेम करते हैं, उनकी बातें मानते हैं। और हॉस्पिटल में कभी भी कोई घटना ऐसी होती है, किसी की मृत्यु होती है, किसी की कोई संकट आता है, तो वो हमेशा उनको मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। इसलिए हम मिसेस संगीता कोलते यानी असिस्टेंट मैनेजर जनरल एडमिशन, उनका भी जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं। साथ साथ हमारे रमेश मिटभावकर, जो अभी टेक्निकली रिटायर हो चुके हैं लेकिन वो भी हमारे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के फौज के पुराने फौजी हैं, बहुत शुरुआत से उन्होंने भी भक्ति वेदांत क्लिनिक में अपना करियर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में चालू किया था 1993 में, तब वो स्टोर कीपर के रूप में काम करते थे। आज हमारे हॉस्पिटल से वो टेक्निकली HR डिपार्टमेंट के ऑफिसर के रूप में निवृत्त हो गए, फिर भी अपनी सेवा PV दोषी हॉस्पिटल में दे रहे हैं। उन्होंने भी हॉस्पिटल के उतार चढ़ाव में बहुत ही कीमती सहयोग हमारे इतिहास में दिया है। हमारे हॉस्पिटल में अभी कई लोग नए हैं, उनको पता नहीं कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल शुरुआत में कैसे कैसे घटनाओं से गुजरा है और इन सभी घटनाओं के साक्षी और मददगार और सहयोगी ये हमारे कर्मचारी हैं, इनके हम बहुत ऋणी हैं। तो इनको भी हम अपने उनके जन्मदिन पर अपनी ओर से बधाई देते हैं। साथ साथ में टेलीफोन इंक्वायरी रिसेप्शनिस्ट मिस हेमलता रघुनाथ नाइक और स्टाफ नर्स मिस पूनम महाड़िक, इनका भी जन्मदिन है। तो इन पांचों परिवार के सदस्यों को हम हार्दिक बधाई देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि रमेश मिटभावकर जी अभी कंसल्टेंट के रूप में सेठ PV दोषी हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग सवेरे की प्रार्थना में उपस्थित रहे, आप सबका धन्यवाद है। आइए हम सब मिलकर प्रभुपाद को हम पुष्प अर्पण करें और आज के दिन की शुभकामनाओं के साथ हरे कृष्णा और धन्यवाद।